आप सभी का स्वागत है इंटरेस्टिंग कोर्स में। और मुझे ये देख के मेरी आवाज साफ आ रही है? अभी अभी किसी का चैट बॉक्स में मैसेज आया कि वॉइस साफ नहीं आ रही।
मुझे तो साफ आ रही है प्रभु जी।
मुझे भी प्रभु।
ओके
वॉल्यूम कम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए।
वॉल्यूम कम है। ओके अभी एक्चुअली मेरे गले का वॉल्यूम कम है, वो बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। या इसका वॉल्यूम तो फुल है, मैं धीमे ही बोल रहा था, अभी थोड़ा तेज बोलूंगा तो आवाज आएगी। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इस शास्त्रों के अध्ययन के लिए आपने रुचि दिखाई है। सामान्यतः हम देखते हैं कि क्लासेस हमारी बहुत सारी होती हैं इस्कॉन में, सामान्यतः हर भक्त बहुत सारी क्लासेस सुनता है। स्पेशली जब से यूट्यूब कल्चर चालू हुआ है तब से लोगों के कीर्तन और क्लासेस सुनना बहुत बढ़ गया है। परंतु एक फैक्टर है शास्त्रों का अध्ययन, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन या शास्त्रों का अध्ययन जो है वो भक्तों को कमिट करना बहुत मुश्किल होता है। सामान्यतः जब भी मैं भक्तों से पूछता हूँ तो भक्तों का ये आंसर होता है कि प्रभु जी बुक रीडिंग या पुस्तक पढ़ना नहीं हो पा रहा है, बाकी सब चल रहा है। तो इन जनरल ये बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, प्रभुपाद की पुस्तकों को कैसे हम इफेक्टिवली स्टडी करें और कैसे हम उनको अपने जीवन में उपयोग करें और प्रचार में भी उपयोग करें। और ये प्रश्न कई भक्त पूछते भी हैं, बहुत बहुत साल से बहुत सारे भक्त ये प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इसलिए ये हमारा प्रयास था कि देख सकें हमारा ये प्रयास था कि हम देख सकें कि किस प्रकार से अच्छा एक मैसेज आया है अभी जस्ट कि रोजी आई डोंट नो हिंदी, कैन यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश वंस यू कम्युनिकेट इन हिंदी। ओके मैं प्रयास करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ। इट विल टेक लिटिल मोर टाइम बट एनीवे हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो या तो ये बहुत अच्छा प्रयास है शास्त्र का अध्ययन के लिए रुचि दिखाना। इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी ऑल्सो टू सी सो मैनी ऑफ यू हैव कम फॉर दिस कोर्स। और इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे शास्त्र का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है और कैसे हम इफेक्टिवली शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू ट्राई टू मेमोराइज द थिंग विच वी आर रीडिंग और कैसे उसको हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम उसको प्रचार में उपयोग कर सकते हैं। तो शास्त्र अध्ययन के विशेषकर शास्त्रों में ही शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए ये उपनिषद में ही लिखा हुआ है। शास्त्र अध्ययन के तीन स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप होते हैं श्रवणम मननम निधिध्यासनम। श्रवणम का मतलब हियरिंग, श्रवणम मीन्स टू हियर। इन आवर केस दिस हियरिंग इज अच्छा ओम प्रभु हरे कृष्ण ओम प्रभु
यस प्रभु जी।
एक और मैसेज आया है इंग्लिश ट्रांसलेट करने का, किस प्रकार से करना है, हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है कैसे करना है?
जैसे आप
बॉक्स में आपने भी देखा होगा।
हाँ मैंने देखा। हाँ वैसे मुझे तो इतना ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आता, मैं ट्राई अगर दूसरे कोई प्रभु हो वॉलंटियर करना चाहते हो कर सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश चाहते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। ट्राई कर सकता हूँ वैसे अगर कोई हो ना रेडी तो।
ओके
या फिर आप प्रभु आप भी अगर हाँ हिंदी के भी आ रहे हैं, हिंदी के मोस्ट ऑफ है, वैसे बहुत कम है जो इंग्लिश के।
तो एनीवे फिर मैं केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ।
ओके मैं ट्राई करूंगा प्रभु इंग्लिश में, ऐसा है तो मैं चैट बॉक्स में लिखते रहूंगा।
हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं। तो शास्त्र अध्ययन के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, तीन स्टेप्स में हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या किसी भी आध्यात्मिक स्रोत से जब हम सुनते हैं तो उनको तीन स्टेप्स में हम जीवन में अप्लाई करते हैं। देयर आर थ्री स्टेप्स ऑफ सिस्टमेटिक स्क्रिप्चुअल स्टडी। पहला स्टेप होता है श्रवणम। श्रवणम मतलब हियरिंग, हमारे को हमारे सेंस में उसको बोला जाएगा शास्त्रों को पढ़ना। शास्त्रों के पढ़ने का मतलब है, एक्चुअली संस्कृत में दो टर्म होते हैं, लिसनिंग और हियरिंग, दोनों अलग अलग टर्म हैं। हियरिंग का मतलब होता है, जैसे एक तो होता है लिसनिंग मतलब सुनना, जैसे हम गाना सुनते हैं, सुनते सुनते काम करते रहते हैं, कुछ और काम करते हैं और गाना लगा देते हैं तो वो चलता रहता है, हम काम करते हैं। लिसनिंग में इस प्रकार से होता है कि वी आर नॉट एबल टू कंसेंट्रेट मच, द वॉइस इज गोइंग इन बट वी आर नॉट एबल टू कंसेंट्रेट मच एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो लिसनिंग में ज़्यादा हम दिमाग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, परंतु जब हम हियरिंग करते हैं तो हियरिंग का मतलब ध्यान से सुनना, अटेंटिव हियरिंग, हियरिंग मीन्स अटेंटिव हियरिंग। तो इसी तरह से जब हम शास्त्र का स्टडी करते हैं तो श्रवणम का मतलब होता है कि एक अलग से समय निकाल के शास्त्र का अध्ययन करना, और उस समय में हमें और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी अलग अलग डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अध्ययन तुरंत वीक हो जाता है जितना हम शास्त्र अध्ययन के बीच में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो व्हाट्सएप भी चालू रहता है तो उसके मैसेज जाते हैं, तो बीच में हम फिर मैसेज भी देखने लगते हैं, तो उस केस में हमारी शास्त्र अध्ययन जो है वो हमारा वीक हो जाता है या डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप जो श्रवणम है, श्रवणम बहुत अच्छा होना चाहिए, फिक्स टाइम स्लॉट हम निकाल सकते हैं, भले ही वो 15 मिनट का हो, आधा घंटे का हो, एक घंटे का हो, पर फिक्स टाइम स्लॉट रहने से हम शास्त्र को ठीक तरीके से समझ पाते हैं। और श्रवणम के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मननम। मननम का मतलब है जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर कंटेम्पलेट करना, कंटेम्पलेट व्हाट यू हैव रेड। तो श्रवणम या स्टडिंग, पठनम, श्रवणम या पठनम जो है वो तो हो सकता है आपका आधा घंटा या एक घंटा हो दिन में, परंतु मननम जो होता है, मननम हमारा बाकी पूरे दिन चलता है और चलना चाहिए। जैसे आपने एक उदाहरण देखा होगा कि गाय जब है, जब वो भोजन करती है, गाय जब घास खाती है तो घास वो एक बार खा के अपने पेट में रख लेती है, गाय के पेट में जो आमाशय होता है उसमें घास चली जाती है, और फिर जब गाय शांति से बैठती है तब उस घास को पेट से लाके फिर उसकी जुगाली करती है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रूमिनेटिंग। केवल गाय ही ऐसा पशु है, कुछ और पशु भी हैं, परंतु केवल गाय ही एक ऐसा प्रोमिनेंट पशु है जो जुगाली करना जानता है। ऊंट भी इस प्रकार से जानता है शायद। तो शास्त्र अध्ययन में भी यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। सबसे पहले हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र के अध्ययन करने के बाद जो मननम है उसको हम, शास्त्र में से हमने क्या सीखा वो हम दिन भर याद करने का प्रयास करते हैं। और निधिध्यासनम, ये जो तीसरा स्टेप है, इसका मतलब होता है उसको इम्बाइब करना। तो सबसे पहले शास्त्र को पढ़ना, उसके बाद शास्त्र को पढ़ने में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें दिन भर याद रखना, उनको अपने मेमोरी में डालने का प्रयास करना, और तीसरा होता है उसको अपने पर्सनल जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जो हैं ये हमारे लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए वैदिक शास्त्र के कंपैरिजन में वैदिक शास्त्र के समान है। श्रील प्रभुपाद ने करीब 80 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा है, और इंक्लूडिंग भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितमृत जैसे महान महान लिटरेचर, बड़े बड़े लिटरेचर्स लिखे हैं। तो इस लेवल वन में हम जो 10 पुस्तक चूज करते हैं वो प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स हैं। हालांकि ये पुस्तक बहुत स्मॉल स्मॉल हैं, हो सकता है 40 पेज 50 पेज की हो, परंतु ये सारी पुस्तक अपने आप में बहुत डीप मैसेज रखती हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि भगवद्गीता पढ़ने के पहले इन पुस्तकों को हम पढ़ें, स्मॉल पुस्तकों को पढ़ें, और इवेंचुअली ये पुस्तकें पढ़ने के बाद फिर हम मिडिल पुस्तक और फिर भगवद्गीता और श्रीमद भागवतम को पढ़ सकते हैं। कोई भी पुस्तक चाहे हम पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, वो इन्हीं तीन स्टेप्स में होता है, श्रवणम मननम निधिध्यासनम। निधिध्यासनम मत NIDHIDHYASANAM, निधिध्यासनम। इसका मतलब होता है इम्बाइबिंग द नॉलेज, जैसे भोजन खाना और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना, तो डाइजेस्ट करने को निधिध्यासनम बोला जा सकता है। नॉलेज जब है, नॉलेज को जब रियलाइज किया जाता है तभी वो, नॉलेज को जब डाइजेस्ट किया जाता है और अप्लाई किया जाता है तभी वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होती है। तो श्रवणम मतलब उसको पहले अपने कान से सुनना या आंखों से पढ़ना, और मननम मतलब उसको याद रखने का प्रयास करना, दिन भर उस पर कंटेम्पलेट करना कि हमने जो पढ़ा था। उसके बाद निधिध्यासनम का मतलब उसको अप्लाई करने का प्रयास करना, और जो नॉलेज हमने फाइनली अप्लाई किया निधिध्यासनम, वो हमारा परमानेंट एसेट हो जाता है। ऑल ऑफ अस नीड टू रीच टू द लास्ट स्टेज ऑफ निधिध्यासनम, श्रवणम मननम एंड देन निधिध्यासनम। और इसके अलावा भी जब भी शास्त्र का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें एक और चीज है कि हम किस व्यू पॉइंट से पढ़ सकते हैं। हम कुछ कुछ मेन थीम डेवलप करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे एक तो हमने ये देखा कि तीन स्टेप्स में हमें स्टडी करना चाहिए। एक और हम देखेंगे कि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके नोट्स कैसे बनाना चाहिए, क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए और नोट्स कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः कलयुग के प्राणी होने के कारण हम सभी का जो रिटेंशन पावर है बहुत कम है, इसलिए नोट टेकिंग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, किस प्रकार से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का नोट बनाते हैं। तो मैं किस प्रकार से शास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ किया था और किस प्रकार से नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ, वो मैं डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूँ। जैसे जब भी हम पुस्तक पढ़ने बैठते हैं तो एक तो एक्सटर्नली हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए, और पुस्तक प्रारंभ करने के पहले हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम इस शास्त्र को अध्ययन करना चाहते हैं, आपके भगवत विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर कृपा करिए जिससे हम इसको समझ सकें और जीवन में अप्लाई कर सकें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप शास्त्र अध्ययन के लिए। और प्रार्थना करने के बाद, क्योंकि भगवत गीता में आता है कि भगवान की वाणी को जो पढ़ता है वो भगवान की पूजा करता है, तो जितना कोई पुजारी मंदिर में भगवान की आरती करते समय अटेंटिव होता है, उतना ही एक व्यक्ति को भगवान की वाणी को पढ़ते समय भी अटेंटिव होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती करते समय पुजारी कितना ध्यान से आरती करता है कि एक मिनट भी मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी आर्टिकल मिस नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जितना वो अटेंटिव होता है पुजारी, उसी तरह से शास्त्र को अध्ययन करते समय हमें अटेंटिव होना चाहिए। बिकॉज रीडिंग द स्क्रिप्चर इज एज इम्पॉर्टेंट एज वर्शिपिंग द लॉर्ड। जब हम भगवत गीता या शास्त्रों को पढ़ते हैं तो भगवान को अपनी बुद्धि के द्वारा पूजा करते हैं, तो ये एक्सटर्नली हमें बहुत अटेंटिव होने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम उसको, जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखता है, सबसे पहले उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमें, या तो हमारे पास एक नोटबुक और पेन हमेशा रहना चाहिए। बहुत अच्छा है कि अगर हम एक पुस्तक के लिए नोटबुक में अलग से कॉलम रखें, जैसे हमने स्टार्ट किया ऑन द वे टू कृष्णा पुस्तक से, तो ऑन द वे टू कृष्णा पुस्तक के लिए हम एक नोटबुक रखें, उस नोटबुक में हम उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख सकते हैं। या तो डिजिटल नोटबुक भी हो सकती है या पेन पेपर पे नोटबुक बना सकते हैं, परंतु नोटबुक होना बहुत जरूरी है, नोट्स लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उस पुस्तक में हमने जो सीखा हम खुद भी देख सकें और लोगों को, मतलब बाद में हम उसको उपयोग भी कर सकें अपने प्रचार के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नोट्स को बनाना। और नोट्स को बनाने की टेक्निक क्या होती है? सामान्यतः नोट्स बनाने में 12 तरीके के पॉइंट्स होते हैं, बट वो बहुत डिटेल में है, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव कोर्स के लिए होता है। इन जनरल हम जब प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम दो पॉइंट्स को बहुत इम्पोर्टेंट देखते हैं। एक तो होता है ऐसे पॉइंट्स के नोट बनाना जो कि पर्सनल एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी, हमारी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे पॉइंट्स को अलग से सेग्रीगेट करना, उनको अलग से लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता 13वें अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं विनम्रता की डेफिनेशन, ह्यूमिलिटी इज टू नॉट हैव टू नॉट बी एंग्जियस अबाउट गेटिंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, इसको ह्यूमिलिटी प्रभुपाद जी बताते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो पर्सनल एप्लीकेशन में बहुत जरूरी है कि विनम्रता क्या कहलाती है और किस प्रकार से हम विनम्रता का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है जब आप पढ़ेंगे पुस्तक में तो इस पॉइंट को आपको नोट करना चाहिए, कॉपी पेस्ट करके या नोट करना चाहिए कि विनम्रता क्या कहलाती है, व्हाट इज ह्यूमिलिटी। तो ये हो जाएगा आपके पर्सनल एप्लीकेशन के लिए। और इसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि कृष्ण भक्ति का सिद्धांत, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, हम जस्ट 5 मिनट बाद हम प्रभुपाद की कोई पुस्तक लेके उसमें से पढ़े, एक दो पैराग्राफ पढ़ के हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसमें से नोट्स बना सकते हैं। तो हाँ, एक तो हो गया पर्सनल एप्लीकेशन और दूसरा हो गया शास्त्रिक सिद्धांत। जब भी कोई कृष्ण भक्ति का फिलॉसफी उसके अंदर आ रहा है तो उस फिलॉसफी को हम अलग से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आता है कि हैप्पीनेस कितने प्रकार का होता है, जिसकी जितनी चेतना होती है उतना वो हैप्पी होता है, कहीं पे अगर ये पॉइंट आता है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट शास्त्र पे आधारित है और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और ये हम उपयोग भी कर सकते हैं प्रचार के लिए। तो दो दो सेक्शन हमने देखे, एक तो देखा हमने पर्सनल एप्लीकेशन, दूसरा हमने देखा कृष्ण कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल या भगवान कृष्ण के कितने अवतार होते हैं, ये भौतिक संसार कैसे बनता है, ये सभी शास्त्रीय सिद्धांतों में आते हैं। और तीसरा आता है ट्विचिंग एप्लीकेशन। ट्विचिंग एप्लीकेशन का मतलब होता है कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो हम प्रचार में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी शास्त्रों को पढ़ते समय कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे एक उदाहरण आता है जो हम उदाहरण देते हैं कि मिस्टर फ्रॉग, एक व्यक्ति को पता नहीं था कि आध्यात्म, एक एक मेढक को पता नहीं था कि समुद्र कितना बड़ा होता है, वो मेढक कुएं के पानी में रहता था। तो जब एक दूसरा मेढक समुद्र से वहां आता है और वो मेढक उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए, तो वो दूसरा मेढक बताता है मैं तो समुद्र से आया, समुद्र में बहुत पानी रहता है। तो जो पहला वाला मेढक है ये उससे पूछता है समुद्र कितना बड़ा होता है, इस कुएं से 2 गुना बड़ा है। तो वो हंसने लगता है कि अरे समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। तो ये बोलता है कितना बड़ा होगा, कुआं से 10 गुना होगा। तो नहीं नहीं समुद्र को तुम तुलना नहीं कर सकते कुआं के साथ। तो इस प्रकार से वो जो मेढक है वो अपना हाथ फैला के बताने लगता है नहीं 10 गुना है, 50 गुना है, ऐसा फैलाते फैलाते अपने पूरे शरीर को इतना फैलाता है कि फट जाता है। तो ये उदाहरण शास्त्रों में आता है और शास्त्रों में ये उदाहरण किस कॉन्सेप्ट को बताता है कि भौतिक वैज्ञानिक जो है वो कितना भी प्रयास कर लें वो भगवत धाम की वस्तुओं को या आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ सकते। इसको प्रूफ करने के लिए शास्त्रों में इस एग्जाम्पल को दिखाई दिया जाता है। तो जब भी ऐसी कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ऐसी कोई केस स्टडी पढ़ते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो हम उस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल हमारे लिए आएगा ट्विचिंग एप्लीकेशन के फील्ड में। तो मेनली ये 3 वस्तुएं होती हैं। एक तो होता है पर्सनल एप्लीकेशन, हमारे जीवन में हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से वैष्णव क्वालिटीज या अच्छे संस्कार कर्तव्य, ये सभी पर्सनल एप्लीकेशन में आते हैं। और दूसरा होता है ट्विचिंग एप्लीकेशन। ट्विचिंग एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जो हम याद रख सकें और दूसरे लोगों को बता सकें कृष्ण भक्ति में कन्विंस करने के लिए। तीसरा होता है कृष्णा कॉन्सियसनेस सिद्धांत, कृष्ण भक्ति के जो सिद्धांत हैं जैसे कर्म का सिद्धांत है, ईश्वर और जीव के बीच में क्या अंतर है, ये सारे जो सिद्धांत हैं ये कृष्ण भक्ति के सिद्धांत आते हैं। तो जब हम कॉपी में नोट्स बनाते हैं तो हम उनको इन 3 कैटेगरी में रख सकते हैं और इन 3 कैटेगरी के अंदर जिस कैटेगरी में आपको वो पॉइंट लगता है उस कैटेगरी में उस पॉइंट को रख सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर ऐसे करते करते आप एक एक पुस्तक पढ़ेंगे तो जब आप कभी उस अपने नोट्स को देखेंगे तो उस नोट्स को देख के आपको पूरी किताब याद आ जाएगी। तो आपको बार बार वो किताब याद करने की पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, उस केवल उस नोटबुक को देखिए आपको पूरी किताब पता चल जाएगी। और जब कभी भी आपको उस किताब को किसी को बताना है उसके बारे में, कृष्ण भक्ति के बारे में, या किसी को लेक्चर देना है या कोई प्रोग्राम है, तो आप केवल उस नोटबुक को देखिए, उस नोटबुक में से आपको सब मिल जाएगा, उसके आधार पर आप क्लास भी दे सकते। तो ये एक शॉर्ट तरीका है नोट टेकिंग का, शॉर्ट एंड इफेक्टिव तरीका। हालांकि जब हम और डीप में जाते हैं तो नोट टेकिंग और इलेबोरेट एक्सरसाइज है, बट प्रभुपाद की स्मॉल पुस्तक के लिए इतना सफिशियंट है कि तीन कॉलम बनाना अपनी नोटबुक में, या तो डिजिटल नोटबुक या कॉपी पेन पे तीन तीन कॉलम बनाना, पहला कॉलम पर्सनल एप्लीकेशन, दूसरा कॉलम टीचिंग एप्लीकेशन, तीसरा कॉलम कृष्णा कॉन्शियस सिद्धांत, कृष्ण भक्ति सिद्धांत, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको तीन में रखिए। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जो इन तीनों में कहीं नहीं आ रहा है तो उसको अदर्स करके लिख सकते हैं। मैक्सिमम चार कॉलम रख के आप अपनी नोट्स बनाना चालू कर सकते हैं। और ये नोट्स, ये काम आपको तब करना है जब आप किस पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक पढ़ते समय ये काम करना है, और पुस्तक पढ़ने के बाद वो तीन स्टेप जो है श्रवणम मननम और निधिध्यासनम। श्रवणम मतलब पुस्तक ठीक से पढ़ना, मननम मतलब ये जो आपने नोट्स बनाए हैं इन नोट्स को दिन भर रिवाइज करने का प्रयास करना, दिन में समय निकाल कर कम से कम एक दो बार इसको रिवाइज कर सकते हैं जिससे कि वो चीज आपके मन में रिफ्रेश रहे। और निधिध्यासनम मतलब इसमें से कौन सी वस्तुएं आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं अपने जीवन में उपयोग करने। और इस इन सब चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए ही इस प्रोग्राम में, इस कोर्स के अंदर हमने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है कि आपसे हम लोग क्विजेज भी पूछेंगे जिससे कि हमें ये श्योर होगा कि आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि अगर आप ठीक से नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप क्विज के आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको क्विज भी पूछेंगे हर चैप्टर से रिलेटेड, जो भी आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड, और साथ साथ उस सेक्शन में क्या क्या दिया गया है वो हम स्मॉल ऑडियो क्लिपिंग के द्वारा भी आपको सेंड करते रहेंगे, और इन क्विजेस के मार्क्स के आधार पे हमें पता चलता रहेगा कि आपका स्टडी कैसा चल रहा है, और जिसका भी सेटिस्फैक्ट्री स्टडी रहेगा उनको हम इवेंचुअली सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, फिर लेवल टू लेवल थ्री इस प्रकार से आगे चलेंगे। तो ओके माता जी का है, प्लीज रिपीट द थ्री कॉलम्स वंस अगेन। ओके, पहला कॉलम है पर्सनल एप्लीकेशन, शास्त्र में से ऐसी वस्तुओं को निकालना जिनको आप अपने जीवन में उपयोग करने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः अच्छे गुण, संस्कार, कर्तव्य, ये सब वस्तुएं जब शास्त्र में आता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये इस सेंस में आएगा। दूसरा कॉलम होता है प्रीचिंग एप्लीकेशन, कौन सी वस्तुएं, जैसे स्पेशली केस स्टडी है, शास्त्र में कुछ कुछ स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी का मीनिंग क्या निकलता है वो बताया गया है, वो प्रीचिंग एप्लीकेशन में आता है। और तीसरा आता है कृष्ण भक्ति सिद्धांत, जैसे कर्म का सिद्धांत आया, सच्चे सुख का सिद्धांत आया, और ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, माया शक्ति क्या है, ये सब जो है कृष्ण भक्ति के सिद्धांत, तो ये तीसरे कॉलम में आ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जो इन आपको लगता है इन तीनों में नहीं है तो वो चौथे कॉलम में आप रख सकते हैं। तो ये मेन चार कॉलम है जो आपको स्टडी करते समय उपयोग करना है, और इन चार कॉलम्स को आपको रिवाइज भी करना है मननम करते हुए, और फिर इसमें से आप क्या अप्लाई करेंगे। और उसके लिए एक्चुअली और डिटेल में अगर आप करना चाहें तो उसके लिए आप टाइमलाइन बना सकते हैं कि कितने समय में हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, प्रयास करेंगे, उससे हमें ही फायदा होगा। और जो भी हमारे नोट्स रहेंगे वो हमारे परमानेंट नोट्स रहेंगे, उन नोट्स को हम उपयोग कर सकते हैं शास्त्रों को अच्छे से याद करने में, लोगों को शास्त्रों को बताने में। तो अभी हम एक जस्ट 5 मिनट का एक एक्सरसाइज मतलब जो हमने डिस्कस किया उसको हम ऑन द स्पॉट एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। ओम प्रभु, आपके पास अभी सॉफ्ट कॉपी है क्या कोई पुस्तक की, ऑन द वे टू कृष्णा या कोई पुस्तक?
हाँ,
अगर नहीं है तो मैं पढ़ता हूँ।
हाँ, 2 मिनट में शेयर करने का ट्राई करता हूँ।
ओके, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जस्ट एक दो पैराग्राफ उसमें से पढ़ के समझाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी पहली पुस्तक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा पुस्तक है लेवल 1 का, ऑन द वे टू कृष्णा, ये पुस्तक श्री प्रभुपाद की टीचिंग्स पे आधारित है, और इसका पहला अध्याय एक्चुअली सबसे, ये मेरी पहली पुस्तक भी थी ऑन द वे टू कृष्णा मैचलेस गिफ्ट, ये मेरी इनिशियल पुस्तकों में से है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति का जो भी जिस्ट है वो इन पुस्तकों में बहुत डिटेल में दिया गया है। तो ऑन द वे टू कृष्ण पुस्तक जो है उसका पहला चैप्टर होता है सुख के थ्रू वे टू हैप्पीनेस, सुख का रास्ता, सुख का रास्ता कैसे प्राप्त किया जाए वो पहले अध्याय में दिया है। और इसका पहला पैराग्राफ जो है वो इस प्रकार से है, मैं जस्ट इंग्लिश में पढ़ूंगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एवरी वन ऑफ अस इज सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस बट वी डू नॉट नो वॉट रियल हैप्पीनेस इज। वी सी सो मच एडवर्टाइज अबाउट हैप्पीनेस बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी सी सो फ्यू पीपल हैप्पी। दिस इज बिकॉज सो फ्यू पीपल नो दैट द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स। इट इज दिस रियल हैप्पीनेस दैट इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता बाई लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन। ये इसका पहला पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ में एसेंशियली डिस्कस किया गया है कि संसार में हर व्यक्ति सुख के पीछे पागल है, सुख की खोज कर रहा है। सुख की खोज सभी लोग कर रहे हैं परंतु उनको पता नहीं है कि वास्तविक सुख क्या है। और हालांकि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है हैप्पीनेस के बारे में, ये दिल मांगे मोर और बात बन जाए, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं बिलबोर्ड्स पे, एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ये करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। परंतु प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पूरे संसार में ज्यादातर लोग सुखी नहीं है। अध्याय का नाम है थ्रू वे टू हैप्पीनेस, चैप्टर वन ऑन द वे टू कृष्णा का पहला अध्याय, सुख की तलाश हिंदी में उसका नाम होगा इस प्रकार से। तो इसमें पहले पैराग्राफ में वही था कि एवरी वन ऑफ अस सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी कि हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो पर्सनल एप्लीकेशन, टीचिंग एप्लीकेशन और शास्त्र सिद्धांत में अगर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे सबसे पहले एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि हम देखते हैं कितने कम लोग खुशी हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकता है, यद्यपि बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे बिलबोर्ड्स भी यूज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट यूज होता है, परंतु बहुत कम लोग सुखी हैं। और इसका क्या कारण है कि वास्तविक सुख जो है वो टेम्पररी वस्तुओं में नहीं है, परमानेंट वस्तुओं में। एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो हमें ज्यादा आसानी रहेगी इसको डिवाइड करने में, क्योंकि अगले पैराग्राफ में इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है, हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस। जो हम ये पढ़ रहे हैं, अगर कोई के पास हिंदी पुस्तक है तो हिंदी पुस्तक में भी देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट बताया गया है। जब आप जिस भी भाषा में आप पढ़ेंगे उस भाषा में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज जनरली परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस, स्टोन फॉर इंस्टेंस हैज नो सेंसेस एंड कैन नॉट परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। डेवलप्ड कॉन्शियसनेस कैन परसीव हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस मोर इंटेंसली देन अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस। Trees have consciousness, but it is not developed. Trees may stand for a long time in all kinds of weather, but they have no way to perceiving miseries. If a human being were asked to stand like a tree for only 3 days or even less, he would not be able to tolerate it. The conclusion is that every living being feels happiness or distress according to the degree of development of his consciousness. So, यहाँ पे इन दो पैराग्राफ में ये बताया गया है, अगर इसका मेन शास्त्रिक सिद्धांत अगर हम देखें तो सिद्धांत आएगा कि हर व्यक्ति सुख उसकी चेतना कितनी विकसित है उसके आधार पर वो सुख को प्राप्त करता है। एवरीबॉडी फील्स हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिज कॉन्शियस। ये इसमें कृष्णा कॉन्शियस सिद्धांत उस कॉलम के अंदर आ सकता है कि ये कृष्ण भक्ति का सिद्धांत है। उसमें हम ये लिख सकते हैं कि व्यक्ति की चेतना जितनी विकसित होगी उतना ही वो सुख या दुख को फील कर पाएगा। और इसका उदाहरण, दो उदाहरण दिए गए हैं, एक उदाहरण दिया गया है पत्थर का, दूसरा उदाहरण दिया गया है पेड़ का। पत्थर में बिल्कुल भी चेतना नहीं होती है, पेड़ में थोड़ी बहुत चेतना होती है, परंतु ये दोनों ही विकसित चेतना वाले नहीं है, इसलिए इनको सुख या दुख कोई फील नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल आता है, दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। और साथ साथ पर्सनल एप्लीकेशन के लिए हम देख सकते हैं कि व्यक्ति को सुख तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वो टेम्पररी वस्तुओं में सुख खोजेगा, तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको आध्यात्मिक वस्तुओं में सुख प्राप्त करना होगा, तभी व्यक्ति को वास्तविक सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये दो पैराग्राफ में देख के हमें पता चल सकता है कि सेम फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, इन तीन कॉलम्स के अंदर कोई एक कॉलम में उसको डिवाइड करना है, और जब हम पढ़ेंगे तो केवल इस कॉलम बना के अगर आप नोट्स लिखते रहेंगे, पर्सनल एप्लीकेशन, टीचिंग एप्लीकेशन और कृष्णा कॉन्शियस सिद्धांत, और फिर इस ये हो जाएगा श्रवणम, इसके बाद होगा मननम, मतलब उसको रिवाइज करने का प्रयास करना, फिर निधिध्यासनम, मतलब उसमें से पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के जीवन में अप्लाई करना, लोगों को बताना, अपने जीवन में अप्लाई करना उस सिद्धांत को, तो उससे वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो ये जस्ट मैंने शॉर्ट में बताया कि किस प्रकार से हम शास्त्रों का अध्ययन इफेक्टिवली कर सकते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और ये समझना होगा कि नो पेन नो गेन। कई बार हम आलस करते हैं कि ठीक है अभी बिस्तर पे सोते सोते ही पढ़ लेते हैं। कई बार भक्तों की आदत होती है कि रात में सोते समय बिस्तर पे किताब लेट के पढ़ते हैं, और फिर सोचते हैं कौन नोट्स बनाएगा, हमें तो सब याद रहेगा। परंतु ये एक अच्छा प्रपोजल नहीं है। हालांकि आप पढ़ेंगे कुछ तो आपको याद रहेगा, परंतु आप इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएंगे। इफेक्टिवली पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा पेन लेना होगा, थोड़ा दिमाग में पेन लेना होगा और हाथ में भी पेन लेना होगा। जब दोनों जगह करेंगे तब हम अच्छे से उसको सीख सकते हैं। तो केवल पढ़ते समय इतना आप कर लीजिए कि तीन कॉलम बना के आप बना लीजिए, उसके बाद दिन में एक बार या दो बार उस जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो तीसरा पॉइंट है अप्लाई करने का, वो तो इवेंचुअली अप्लाई करेंगे तो वो डेवलप होगा, परंतु शुरू के दो पॉइंट्स अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ बेनिफिट हो सकते हैं शास्त्र के अध्ययन से। और बीच बीच में हम लोग क्विज और ऑडियो क्लिप्स भी भेजेंगे कि उसमें क्या दिया गया है, तो उससे आपको आसानी रहेगी उस पुस्तक को ठीक से समझने और उस पुस्तक को पढ़ के अप्लाई करने के लिए। और एक फिक्स समय भी हम बताएंगे कि कितना समय में आपको कंप्लीट करना है वो क्विज के आधार पर। वो डिस्क्रिप्शन ओम प्रभु आपको अभी बताएंगे कुछ देर बाद। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित कुछ अगर पूछना है तो अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर किसी को पूछना है, या चैट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो मैं जस्ट एक दो प्रश्न पूछता हूं। कि हमने कौन से तीन पॉइंट डिस्कस किए थे? सबसे पहले हमने कौन से तीन पॉइंट डिस्कस किए थे? शास्त्र का अध्ययन किन तीन स्तर पे करना चाहिए, कोई बताएगा?
हियरिंग पहला, हियरिंग, और फिर दूसरा मन में सोचना, उसे कंप्लीट करना, और फिर और तीसरा उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना।
ओके, नाइस अनुराग।
श्रवणम मननम और निधिध्यासनम।
या श्रवणम मननम और निधिध्यासनम, तीन स्टेप। इसके बाद नोट्स बनाने के लिए कौन कौन से हमने तीन कॉलम डिस्कस किए?
जी हमने डिस्कस किया था इसमें पर्सनल एप्लीकेशन, फिलोसॉफिकल नॉलेज, कृष्ण भक्ति सिद्धांत एंड प्रीचिंग एप्लीकेशन एंड अदर्स।
प्रीचिंग,
हां ओके, चार कॉलम। कृष्णा कौन से सिद्धांत को आपने वो भी बताया, फिलोसॉफिकल नॉलेज, वो भी लिख सकते हैं, उसका सेम है वही कॉलम जो आप बोल रहे थे, वो नाम मुझे याद नहीं आया था। फिलोसॉफिकल नॉलेज, कृष्णा कौन से सिद्धांत जो है ना वो फिलोसॉफिकल नॉलेज के रूप में ही लिख सकते हैं। ओके, तो आप स्टार्ट करिए इस तरह से शास्त्र अध्ययन करना। कोई भी पुस्तक हम पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे तो हम उसमें से ज्यादा बेनिफिट निकाल सकते हैं। आप में से कई भक्त होंगे जो बहुत समय से रीडिंग कर भी रहे हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ते समय भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ये सामान्यतः भक्ति शास्त्री के सिलेबस में इस तरह से पढ़ाया जाता है। और इवेंचुअली जब आप कभी भक्ति शास्त्र करेंगे तो उसमें और ज्यादा चीजें होती हैं कि किस प्रकार से किस किस एम से हम शास्त्र की स्टडी कर सकते हैं। और आप लोग सभी अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा था, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक बार जो एम्स होते हैं शास्त्र की स्टडी करने के, वो एम्स मेरे पास लिखे हुए हैं, वो मैं आपको भेज सकता हूँ, तो आप लोग इवेंचुअली पढ़ सकते हैं उसको कि क्या एम होना चाहिए जब हम शास्त्र की अध्ययन करते हैं। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा 12 एम्स ऑफ सिस्टमेटिक शास्त्र की स्टडी, तो उसमें आपको मिलेगा चीजें सीखने को। ओके, कुछ पूछना है किसी को? ओके ओमपू, आपको कुछ अनाउंसमेंट करना है या चीजें बताना है तो बता सकते हैं।
कृष्ण प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन दे तो।
हाँ यस
प्रभु, एक्चुअली आपने अदर्स का बताया था, तो उसमें आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, मतलब अदर्स में, मतलब कॉलम में क्या, मतलब कैसे लिख सकते हैं
अदर्स में? एक्चुअली 90% चीजें, मुझे लगता है 95% चीजें इन तीनों में ही आ जाना चाहिए, क्योंकि अदर्स इन द सेंस, हाँ अदर्स उसमें हो सकता है कि मान लो कहीं पे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि कोई साइंटिस्ट का कोई स्टोरी है कि किसी, कोई साइंटिस्ट इस चीज के लिए ऐसा बोलते हैं परंतु ये बोगस चीज है, तो वो आपको प्रीचिंग एप्लीकेशन में डाल सकते हैं, नहीं तो अदर्स में रख सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद कई बार कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर बोलते थे, जैसे मान लो प्रभुपाद जी बताते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे अच्छा है कैसे नहीं है, प्रभुपाद जी बताते थे काउ किलिंग के ऊपर, काउ किलिंग के ऊपर भी प्रभुपाद, काउ किलिंग के ऊपर जो चीज होती थी वो भी अदर्स में आ सकता है, परंतु आप देखेंगे अगर पढ़ेंगे तो 90% से ज्यादा चीजें आपको तीन कॉलम में आ जाएंगी, अदर्स में बहुत कम चीजें रहेंगी। ओके
हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई क्वेश्चन इन बिटवीन जब बुक पढ़ रहे तो अराइज हो तो कैसे सॉल्यूशन करना होगा?
इन बिटवीन कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप ऐसा कर सकते हैं,
वो मेंटर्स रहेंगे, मेंटर्स रहेंगे हमारे, जो क्वेश्चंस अराइज होंगे, जैसे वंशीधर प्रभु जो लेक्चर ले रहे वो है, और वो हाँ वो उनको आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वो मैंने पीडीएफ में लिखा है, वो मेंटर्स रहेंगे, वो इन बिट आपके गाइड हो, वो भी रह सकते, वो भी आपको आंसर दे सकते, या फिर आप वंशीधर प्रभु से भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो आपको आंसर देंगे, उनका नंबर मैंने एडमिन में रखा ही है।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
ओके देन,
हरे कृष्ण।
हाँ प्रभु जी, अबे मारा मेरा सेशन जो है ना, अभी क्या मैं ड्यूटी से अभी आया तो टाइम निकल चुका हुआ है, मैं भी आगे चेक किया था, तो फिर तो प्रभु जी क्या यूट्यूब में मिल सकता है इसको, क्या आप सेंड करोगे सेशन?
ओम प्रभु,
ये तो ये सेशन इसके बाद लाइव होगा यूट्यूब पे, लाइव
टेलीकास्ट। क्योंकि मेरा ड्यूटी का जो टाइम है ना वो अभी क्या छह ये टाइम पे अपना जो है ट्रैवलिंग में होता है निकलने के लिए, तो मैं अभी गा के चेक किया तो चालू हो गया हुआ है ऑलरेडी।
नहीं नहीं प्रभु, मैंने मैसेज डाला हुआ ही था कि जो लोग, क्योंकि किसी के क्लासेस भी है तो वो हमने मैसेज डाला हुआ है कि जिनका मिस हुआ है वो पूरा सेशन फिर से यूट्यूब पे देख सकते हो, पंगास ग्रुप यूट्यूब चैनल पे लाइव हो जाएगा।
ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके,
एक क्वेश्चन था वंशीधर प्रभु, हरे कृष्ण, एक क्वेश्चन था कि क्या हम ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़े या फिर बुक से पढ़े, वो एक क्वेश्चन था। एक इज रीडिंग फ्रॉम ऑनलाइन इज लेस इफेक्ट रीडिंग फ्रॉम बुक्स, राजवीर हनुमान सिंह राजपुरोहित, उनका क्वेश्चन था।
डिपेंड करता है हम किस जनरेशन में हैं, सामान्यतः हमारी जनरेशन के अभी के जो एकदम नए जो छोटे बच्चे हैं उनका जनरेशन ऑनलाइन चालू हो रहा है, तो उनको बचपन से उसकी आदत रहती है, तो उनके लिए कई बार वो चीज भी काम करता है, परंतु हमारे जनरेशन में ज्यादातर लोगों को, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि पर्सनल अगर जो रीडिंग होता है हार्ड कॉपी से हो तो उसका ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें हमें फीलिंग भी आती है और हम कनेक्ट भी अच्छे से कर पाते हैं। परंतु ये एक फिगरेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई अभी का कोई बच्चा होगा एकदम यंग होगा जो मतलब अगली जनरेशन में आएगा, तो उनके लिए हो सकता है ऑनलाइन उनको ज्यादा सूटेबल हो, परंतु मोस्ट ऑफ द केसेस में पुस्तक में से पढ़ना मैं पर्सनली लेवल पे ज्यादा पसंद करता हूँ।
और ब्रो और
हालांकि
सॉरी
सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें से पॉइंट्स निकाल पाना। अगर हम कृष्ण कृष्णा कॉन्शियस सिद्धांत निकाल पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, तो फिर इट्स ओके। ऐसा कोई एकदम 100% वो नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर उसको कोई एडजस्ट हो पा रहा है। और सामान्यतः जो इस जनरेशन के लोग हैं उनको पुस्तकें आवश्यक होती है समझने के लिए।
ओके ब्रो,
यस ब्रो।
माता जी का क्वेश्चन है, प्रतिभा माता जी का। हरे कृष्ण ब्रो जी, यू टॉक दैट वी शुड प्रिपेयर अवरसेल्फ्स एक्सटर्नली फॉर रीडिंग बुक्स, प्लीज एक्सप्लेन मोर अबाउट इट मोर ब्रो जी।
एक्सटर्नली हमें प्रिपेयर करने का मतलब है कि एटलीस्ट बाहर से हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, लगातार मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज नहीं आते रहे, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज का जैसे ही आवाज आता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कोशिश करते हैं सुनने का कि क्या किसी ने भेजा, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देखा। और बहुत अमेजिंग चीज है, जैसे ही हम कोई इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज हमें बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, तुरंत लगता है कि इसको खोलना चाहिए और तुरंत देखना चाहिए। तो एक्सटर्नली अपने आप को तैयार करना मतलब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, कि जिस कमरे में टेलीविजन है या कोई व्यक्ति कुछ मीडिया देख रहे हैं या कुछ चल रहा है, बातचीत चल रही है, वहां से अलग होकर पढ़ाई करें, जहां पे हम अपने आप को कंसंट्रेट कर पाए। और साथ साथ अपने आसपास का वातावरण इस प्रकार से रखें कि कैजुअल स्टडी का वातावरण नहीं हो, और प्रॉपरली एक जगह बैठ के करें। एक्सटर्नली ये भी मतलब है कि लेटे लेटे किताब नहीं पढ़ें, बैठ के किताब पढ़ें। बेस्ट है कि अगर हम कुर्सी रहे, कुर्सी या टेबल है उस पर रख के किताब पढ़ें। तो एक्सटर्नली अपने आप को तैयार करना, जिससे कि हम ज्यादातर ज्यादा उसमें से सीख सकें। एक्सटर्नल एनवायरमेंट, उसको एथोस बोला जाता है, एथोस इस प्रकार से रखें कि हम एक्सटर्नली उसको ज्यादा सीखने के मूड में रहें। ज्यादा थकान नहीं होना चाहिए, अगर थकान हो रही तो रेस्ट करने के बाद पढ़ सकते हैं, ये सब एक्सटर्नल चीजों में आती है। ओके
ओके तो और एक ये क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा गया है, मैं ये आंसर देना चाहूंगा कि बुक्स हम हार्ड कॉपी भेजेंगे अब पीडीएफ, तो पीडीएफ आप सबको दो लैंग्वेजेस में मिलेगी, एक हिंदी है और एक इंग्लिश में। बट जैसे प्रभु जी ने भी बताया, ज्यादा प्रेफरेंस बुक्स पे देना चाहिए, तो वैसे ही अगर हम हार्ड कॉपीज लेना चाहते हैं तो वो ज्यादा प्रेफरेबल भी है और नोट्स मेकिंग में भी हमें ज्यादा हेल्प होगा वो। तो उसके लिए आप हमसे भी वो वॉलंटियर है, इट्स ऑल अपॉन यू, आप कैसे भी बाय कर सकते हो। आप अपने लोकल टेम्पल से भी 10 बुक्स का पूरा सेट ले सकते हो या फिर थोड़े बुक्स का ले सकते हो, उसका कॉस्टिंग ज्यादा नहीं है, इट्स 20 रुपीज पर बुक जो हमारे टेम्पल में जो हम दे रहे हैं वो। आई डोंट नो कि दूसरे टेम्पल्स में, नॉर्मली 20 रुपीज का ही है वो बुक। तो अगर आप हमारे से ये बुक का पूरा सेट 10 बुक्स का अगर बाय कर रहे हो तो एक बुक आपको फ्री दिए जाएगी। सो 10 बुक्स का प्राइस रहेगा 180 रुपीज प्लस डिलीवरी चार्ज। अगर आप लोकल हमारे बड़ौड़ा से बाहर हो तो 10 उसका डिलीवरी चार्ज रहेगा, वो ज्यादातर 80 to 100 मैक्स टू मैक्स। अगर आप बहुत दूर हो हमारे से डिस्टेंस में तो 100 होगा, वरना 80 से नीचे ही होगा वो डिलीवरी चार्जेस। तो उसके हिसाब से आप बुक्स मंगा सकते हो, या फिर और वो लैंग्वेज आपके ऊपर है, आप मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में आप बुक्स ले सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने बुक्स ले भी ली है हमारे से, तो आप वो मुझे पर्सनली अपना एड्रेस भेज सकते हो, एड्रेस और अपना नंबर, जिससे मैं आपको आगे बुक्स का, और वो 4 to 5 डेज में वो बुक्स आप तक पहुंच जाएगी। अभी आप एटलीस्ट हिंदी या इंग्लिश में ऑन द वे टू कृष्णा स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको 10 बुक्स चाहिए तो आप मंगा सकते हो, नॉट ओनली लेवल 1, बहुत सारे ऐसे भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने लेवल 1, 2, 3 तीनों की बुक्स मंगा लिए। सो वो बुक्स भी आप मंगा सकते हो, वो तीनों बुक्स 930 रुपीज में पड़ेगी, 180 रुपीज फॉर लेवल 1, लेवल 3 के 500। और 2 मिनट,
अच्छा, एक्चुअली हार्ड कॉपी रहने का एक और बेनिफिट है कि उसमें ज्यादा ज्यादा लैंग्वेज का अवेलेबिलिटी है। सॉफ्ट कॉपी में इंग्लिश और हिंदी होगा शायद मैक्सिमम, तो हार्ड कॉपी में गुजराती और बाकी अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है। और एक और बेनिफिट होता है हार्ड कॉपी में कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बाद घर पे रहेगा वो पुस्तक, तो आपके माता पिता और भी लोग पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे लोगों के घर में नॉवेल्स पढ़ी रहती हैं, तो इस प्रकार से अगर ये पुस्तक घर में रहेगी तो लोग उसको पढ़ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या, हम बहुत लंबे समय तक रखते नहीं हैं उसको, हम रखते हैं फिर कभी मोबाइल बदल दिया, लैपटॉप बदल दिया, तो फिर वो सॉफ्ट कॉपी चला जाता है, पर हार्ड कॉपी घर में रहने से घर के बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। तो मैं तो प्रैक्टिकली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास एक बार पुस्तक है हार्ड कॉपी तो उसको लेके पढ़ना चाहिए और घर पे रखिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम जिंदगी में बार बार पढ़ने के लिए अच्छा है।
ओके सो वो सेकंड जो नॉवेल है वो उसका प्राइस है 250। सो ऐसे आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको सारे प्राइस, क्योंकि ये एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है हमारा डिलीवरी का, वो सारे प्राइजेस और आपको वो कॉल करेंगे, आप जस्ट मुझे मैसेज करेंगे तो मैं वहां पे ट्रांसफर करके उनको कांटेक्ट करा लूंगा। सो आप मैसेज कर सकते हो और आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो प्रभु जी व्हाट्सएप पे आपको आंसर्स देंगे, आपका रीडिंग थ्रू जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और ये मैं एक चीज बता दूं, ये कोर्स ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि क्लासेस रहेंगे क्लासेस नहीं रहेंगे, ये पूरा का पूरा क्लोज सेल्फ स्टडी बेस्ड ही कोर्स है, इसमें ना क्लासेस होंगे ना कुछ, आपको जस्ट एवरीडे बेसिस पे, जैसे प्रभु जी ने बताया कि एवरीडे बेसिस पे आपको ऑडियोस सेंड किए जाएंगे फॉर योर बेनिफिट, कि आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाए, और वीक में 2-3 बार आपको वीडियो लेक्चर्स भेजे जाएंगे, और शायद हम ऐसा सेमिनार शायद नहीं हम ऐसे सेमिनार्स बीच में लाएंगे ही, माइंड पावर ऐसा कुछ, तो ऐसे सेमिनार्स आपको बीच में इन द बिटवीन द लेवल 1 आपके सेमिनार्स रहेंगे, और जो लास्ट में प्राइजेस है वो आपके ओवरऑल जो कोर्स का पूरा जो परफॉर्मेंस रहेगा उसमें आपको जज किया जाएगा, नॉट ओनली ऑन द लास्ट एग्जाम, आपका जो डेली क्विज है और डेली टास्क कैसे आप कर रहे हो वो सब, बाद में एक बुक के बाद जो एग्जाम रहेगी उसके, सो ओवरऑल थ्रू आपको जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसमें लास्ट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद आपको वो प्राइजेस जो 400, 300 और 200 है वो आपको दिए जाएंगे। सो वेलकम, और कल से हम स्टार्ट करेंगे, और या एक टास्क, हम डिफरेंट टास्क भी बीच में रहेंगे। मैं एक ऐप सजेस्ट कर रहा हूँ टू एवरीवन, एक कैनवा ऐप है CANVA, मैं ये लिंक डाल दूंगा, वो कैनवा ऐप थ्रू आप फोटोज एडिट कर सकते हो, तो इन बिटवीन द टास्क में 1-2 दिन हम ऐसा भी रहेगा जिसमें हम आपको टास्क देंगे कि जो आपने अभी तक पढ़ा उसमें से आपको बेस्ट कोट प्रभुपाद का कौन सा अच्छा लगा, तो वो कोट को आपको उस ऐप में कोई भी डिजाइन में से आपको जो डिजाइन पसंद आए वो डिजाइन में वो कोट डालना है, नीचे अपना प्रभुपाद का नाम, और वो एडिट करके वो फोटो हमको भेजना है, जो बेस्ट फोटोज होंगे वो हमारे पेज पे जो गौरांगास ग्रुप पेज है फेसबुक इंस्टा यूट्यूब उस पर शेयर भी किए जाएंगे। सो ऐसे सब टास्क रहेंगे, तो जिससे हमारा मेन गोल ये है कि आप थ्रू प्रीचिंग भी थोड़ा थोड़ा सीखे, जैसे वीडियोस भी अगर आप बना सकते हो जो उनको बेनिफिशियरी, ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं बनाएंगे उनके मार्क्स कट होंगे, पर जो लोग बनाएंगे उनको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा है तो हम बीच में मैं बोलता रहूंगा थ्रू, जब हम ग्रुप मीटिंग्स करेंगे तो मैं आपको बता रहूंगा कि कैसे हम टास्क बीच में ऐसे, मतलब जैसे एग्जाम्पल्स है तो थोड़े थोड़े ऐसे इंटरेस्टिंग थोड़ा बुक्स को रीड करने के लिए हम ऐसे टास्क डालते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया हमें, और ये कोर्स को इतने अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन थ्रू हमको इतना एंगेज भी किया। सो और आपको PDFs और वो सब भेजा दिया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी ये दो ही लैंग्वेज हम भेजेंगे, और ऑडियो भी ऑडियो जो रहेंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश ये दो ही लैंग्वेज में रहेंगे, और एग्जाम भी हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में रहेगी, सो वो भी टेंशन ना लीजिए जो लोग इंग्लिश ओके प्रभु।
एक प्रश्न आया है
ओम प्रभु,
इसमें क्विज डेली बेसिस रहेगा या वीकली बेसिस? क्विज डेली बेसिस रहेगा ना?
डेली।
ओके, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, आप केवल अच्छे से स्टडी करिए, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। कई बार शुरू में हम सुनते हैं तो लगता है कि ये भी होगा वो भी होगा, तो हम चकरा जाते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा लोड तो नहीं आ जाएगा, तो उतनी चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप केवल जो हमने पढ़ने का जो तरीका बताया है कॉलम बना के और सबडम करके वो करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाकी क्विजेज जो है वो तो बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ेंगे।
5 questions, only 5 questions.
आप डेली को
I only 5 questions
सर, केवल डेली आप समय निकालिए, कम से कम जितना भी आधा घंटा जितना भी निकलता है, और जो फिक्स टाइम है उतना आप पढ़िए, तो इवेंचुअली बाकी चीजें आसानी से हो जाएंगी। ऑडियो क्लिपिंग जो हम आपको भेजेंगे उससे आपको मदद मिलेगी, जो आपने पढ़ा है उसको और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, और क्विज बहुत आसान रहेंगे, बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको आप आसानी से कर सकते। तो मेन हमारा जो है आपका जो मेन कार्य है शास्त्रों को पढ़ना,
और ये जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से एक सजेशन चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि क्विजेस का स्पेसिफिक टाइम रखे, लाइव क्विजेस या फिर क्विजेस ऐसे भी हम रख सकते हैं जो पूरा दिन भी आप दे सकते हो, जो आपको जैसा। अगर मैं सजेशन है, दो आप दो ऑप्शंस है, एक हम ऐसा कर सकते हैं एट नाइन रात को 9 से 9:30 बजे क्विजेस का टाइम रख दे, या फिर पूरे दिन में आप कभी भी रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ओके, फुल डे आ रहा है ऑप्शंस, सारे बहुत सारे लोगों ने फुल डे पूरा दिन लगा है। ओके, तो क्विजिस पूरा दिन रहेगा, आप कभी भी उसको पढ़ के आंसर्स दे सकते हो, पर आई वुड सजेस्ट कि पढ़ने के 1-2 घंटे बाद क्विज करो, क्योंकि तुरंत तो आपको याद रहने वाला है। सो प्लीज उसके तुरंत बाद एग्जाम मत देना, थोड़े टाइम के बाद एग्जाम्स देना। सो क्या हमें भी पता रहेगा कि आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। ओके,
ओके एक और प्रश्न आया है, आई हैव अ क्वेश्चन। या अर्चना देव, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कोई प्रश्न है।
यस माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण, आपने चैट बॉक्स में
अरे
लिखा
आप
है,
लिख के
प्लीज
भी
आई
भेज
हैव अ
सकते
क्वेश्चन।
हो,
ओके, लिख के भी भेज सकते हैं। और
आप ऐसा हो तो मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो अर्चना माता जी क्वेश्चन आपका। अगर आपको आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन लिख लिख के भेज भी सकते हैं।
ओके, ओम प्रभु। एक
यस
और इसमें मैसेज है, आप ये करिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने आज डिस्कस किया है ना मीटिंग में, जो कॉन्सेप्ट, वो
यस
कॉन्सेप्ट जस्ट शॉर्ट में लिख के नोट्स के जैसे इसमें मीटिंग में डाल सकते हैं व्हाट्सएप में। एक
तो
आपको
मेरा एक
मैसेज
नोट्स
आया है ये,
बनेगा, नोट्स बनने का हो गया। सो पहली नोट
तो ये आप डाल देंगे, तो जिसने अटेंड नहीं किया है वो भी मिनट्स मिनट्स समझ में आ जाएगा कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है।
हाँ, वो
ठीक है,
वैसे जो हिंदी जानते हैं उनको यूट्यूब पे वो ये क्लास मिल ही जाएगा, वो भी लिंक मैं शेयर करूंगा जब लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा।
ओके।
और जिन लोग ने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है उनसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आज के आज रिक्वेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि जो प्रभुपाद बुक रीडिंग वाला ग्रुप है वो कंटिन्यू होगा तो वो कंटिन्यू नहीं होने वाला है। मैं हमने दूसरा ग्रुप बना दिया है जो जिसमें पार्टिसिपेंट्स जिनने रजिस्टर कर लिया वही है। अगर आप रजिस्टर्ड हो और वो ग्रुप में नहीं हो तो भी आप जल्दी से जल्दी मुझे मैसेज करें तो आप ग्रुप में ऐड होंगे, क्योंकि वो जो ग्रुप है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए ग्रुप है, उसमें हम सिर्फ कोट्स और वही शेयर करेंगे। तो प्लीज अभी तक वो लिंक, आप तक रजिस्ट्रेशन लिंक ना पहुंची हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए और मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ लिंक। सो प्लीज आप ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट
आपका नंबर भी
मार्च में
चैट
हम।
बॉक्स में
हाँ,
डाल दीजिएगा प्लीज,
और जो
आपका नंबर चैट बॉक्स में डाल
रजिस्टर्ड नॉट
दीजिएगा।
बट इन द ग्रुप तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मेरा नंबर वैसे होगा ही, नहीं होता 7600 1562555, 7600 1562555। ओके, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर लीजिए और जिन लोग ने नहीं किया वो प्लीज आप रजिस्टर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द
थैंक यू प्रभु
बेस्ट।
जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।